الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کا ایک معلوماتی اور منفرد سلسلہ اسلام اور سائنس، اور آج ہم بات کریں گے ایک موضوع پر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی انسان اپنی زندگی کا 1/3 ایک تہائی جس ایکٹیویٹی میں گزار دیتا ہے، جس کام میں گزار دیتا ہے، اس بات کو آج ہم موضوع بنائیں گے۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے سلیپ یعنی نیند، اور اس میں خاص طور پہ سلیپ لیسنس انسومنیا یعنی بے خوابی کا جو مرض ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے سلسلے میں آپ کیا کیا جان سکیں گے، آئیے ہائی لائٹ سنتے ہیں۔ آخر نیند کیوں ضروری ہے؟ ہم کیوں سوتے ہیں؟ سونے سے پہلے کون سے کام کیے جائیں اور کن کاموں سے بچا جائے کہ نیند پرسکون حالت میں آئے؟ ہر عمر کے لیے سونے کا دورانیہ مختلف ہے، ایج بریکٹس کے لحاظ سے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور وہ کتنا ہے۔ چھٹیوں کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ سوتے ہیں، دیر تک سوتے رہتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کئی جاندار، بالخصوص مچھلیاں، ان کی تو آنکھیں بند نہیں ہوتی، تو وہ پھر کیسے سوتی ہیں؟ اور سونے کے دوران یہ بولنے اور چلنے کے جو معاملات ہیں، سومنامبولیٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ بیماری ہے یا یہ نیچرل ریسپانس ہے؟ کیا زیادہ سونا نقصان دہ ہے؟ یہ اور بہت سی دلچسپ اور امپورٹنٹ باتیں جاننے کے لیے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثاقب ہیں اور ڈاکٹر اسامہ ہیں۔ شاید یہ سمجھا جاتا ہو کہ نیند کے دوران انسان کا جسم اور دماغ وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یعنی بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لاٹس آف امپورٹنٹ پروسیسنگ، ریسٹوریشن اینڈ اسٹرینگ اکرز۔ بہت سے اہم کام، جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں اور مضبوطی آ رہی ہوتی ہے۔ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کے مطابق نیند کے دوران یادداشت اور سوچیں کنسولیڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جاگتے وقت انسان بہت سی نئی باتیں سیکھتا ہے، انکریڈیبل اماؤنٹ آف انفارمیشن، اور سوتے وقت یہ ساری نئی باتیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، ان پر کام ہوتا ہے اور یہ سٹور کی جاتی ہیں۔ اسے میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں کنسولیڈیٹ۔ اور انسان اپنی زندگی کا ایک تہائی یعنی 1/3 حصہ سونے میں گزار دیتا ہے، یعنی اگر کسی انسان کی عمر 75 سال ہے تو 25 سال کا عرصہ اس نے سو کر گزارا۔ اینڈ فار دس شٹ آئی از ویری امپورٹنٹ، یہ آنکھیں بند کر کے سونے والا جو کام ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ بہت سے نظریات ہیں کہ آخر انسان کیوں سوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحبان کو اپنی ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 1/3 پورشن آف آر لائف وی اسپینڈ ان سلیپ۔ سیکنڈلی، ون تھنگ وی ہیو ڈسکسڈ دیٹ ڈیورنگ سلیپنگ آل دا میموری از ریسٹورڈ اینڈ دے کنسالیڈیٹ۔ انسان کیوں سوتا ہے، کیا یہ پروسیس ہے، کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔
سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نیند جو ہے اس کا میکنزم کیا ہے، یعنی کس طرح انسان کو نیند جو ہے نا وہ آتی ہے۔ بریفلی میں تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے، اور یہ نیند کا ہمارا پیٹرن جو ہے نا اندھیرے اور اجالے کے ساتھ یہ بہت زیادہ اس کا لنک ہے۔ جیسے اندھیرا آتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو جو ہماری آنکھیں ہیں ان میں روشنی کم ہوتی ہے، ریٹنا کو جو ہے وہ سٹیمولس ملتا ہے کہ اب اندھیرا ہے، وہ سٹیمولس ہائپو تھیلمس دماغ کا ایک حصہ ہے وہاں جاتا ہے، وہاں جا کے پھر وہ آگے سٹیمولس بھیجتا ہے، پینیئل گلینڈز ہوتے ہیں وہاں پہ ہارمون سیکریٹ ہونا تھا میلاٹونین۔ تو جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ سارا سٹیمولس اس کو ملتا ہے کہ اب اندھیرا ہے، اور جو اندھیرے کی وجہ سے جو ہے اب
یعنی ایک آنکھ کے اوپر یہ امپریشن آیا کہ ڈارک، ایک اندھیرا ہو گیا، اور وہ اندھیرا اس کا میسج پھر پیچھے دماغ میں گیا، اور دماغ نے اس بات کی تیاری شروع کر دی کہ اب میں نے سو جانا ہے۔
جی بالکل۔ تو جیسے ہی اس کو سٹیمولس ملا میلاٹونین والا، تو ब्रेन को पता जो ना मेलाटोनिन सिक्रीट हुआ, सिक्रीट होने के बाद जो है वो बंदे को जो ना नींद को सुकून आना शुरू हो जाती है वो इस हार्मोन की वजह से। अब सोना क्यों जरूरी है कि बंदा जब सोता है, जब नींद में जाता है तो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। अब वो जब वो सोएगा तो उसको दिमाग को जो है एक स्टेज है नॉन रेम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, उसके अंदर दिमाग को एक सुकून मिलता है, यानी कि जो एक्टिविटीज उसने की होती हैं उसमें दिमाग उसमें रेस्ट लेता है। और जो एक स्टेज फिर आती है उससे अगली रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रैम स्लीप उसको बोलते हैं, उसमें बेसिकली दिमाग की जो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। नींद की हालत में बंदा जो है ना बिल्कुल सोया होता है लेकिन उसका दिमाग एक्टिवेट होता है। अब उस स्टेज के अंदर जो है ना वो मेमोरी कंसोलिडेशन और सारी चीजें दिन भर की होती हैं जो कि आपने सुनी होती है पढ़ी होती है उसके अंदर कंसोलिडेट हो रहा होता है। तो बेसिकली ये एक रेस्टिंग फेज है दिमाग के लिए जो उसको चाहिए होता है।
यहाँ भी दिमाग भी दो हिस्सों में आ रहा है, पहले हिस्से में दिमाग सो रहा है, खुद भी सो जाता है लेकिन नींद के अंदर ही वो दोबारा जाग जाता है और फिर अपने कामों को सर अंजाम देता है। डॉक्टर साहब यहाँ तक अभी हमने जो साइंटिफिक रिसर्च पढ़ी उसके मुताबिक स्टिल इट इज ए मिस्ट्री कि इंसान क्यों सोता है। अभी तक साइंस के लिए भी एक राज है टोटली कि वाई ह्यूमन स्लीप। ज़हनी याददाश्त वाली बात जो मैंने शेयर की वो बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्लीप साइंटिस्ट के मुताबिक जो उन्होंने एक रिसर्च की जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में 2014 में वो रिसर्च हुई कि अगर 24 घंटे बगैर सोए गुजारे जाएं तो इस अमल से सेहतमंद इंसान के अंदर भी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं। मसलन उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, याददाश्त पर असर पड़ेगा और ख्याली तस्वीरें भी नजर आ सकती हैं। इसका ख्याल करना चाहिए, यानी हेलुसिनेशंस और स्किट्सोफ्रेनिक इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसकी ना सोने की वजह से उसके जिस्म में और दिमाग में तब्दीलियां आ जाती हैं। डॉक्टर सामा, ना सोना क्या ये इंसानी सेहत पर बुरे असरात रखता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींद इंसानी जिंदगी का एक साइकिल जो डे एंड नाइट का चलता है अल्लाह ताला ने बनाया, उसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जाहिर सी बात है अगर नींद को हम ओमिट कर देते हैं तो चूंकि नींद के दौरान हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो नींद के दौरान होने, जिसमें से एक बहुत बड़ा फंक्शन हमारी ग्रोथ का है जो बच्चों के अंदर होनी होती है, फिर बॉडी के बहुत सारे सेल्स का टर्न ओवर होना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने दिन भर में बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट किया है, आपको मसल्स के अंदर पेन महसूस हो रही है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो चुका है, अब रात को जब आप आराम करेंगे तो वो सारा का सारा उसका साइकिल चलेगा और वो वहाँ से निकलेगा। यानी कि बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको स्लीप की ज़रूरत है, मैंडेटरी है। इसमें ना सिर्फ ये कि आपका जो जैसे आपने बताया कि दिमाग जो है वो भी कुछ उसका एक फेज आता है जिसके अंदर वो रेस्ट में चला जाता है, बाकी सारी बॉडी ऑर्गन्स के लिए भी ये नेसेसिटी है। अगर हम इसको ओमिट कर देते हैं तो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन सारे के सारे इफेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ये ऐसा करते हैं कि जैसे रात की बजाय दिन के वक्त सोना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक चल रहा होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया एक पाइनियल ग्लैंड है जो कि दिमाग के अंदर होता है, वहां से हार्मोन्स निकलते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्लॉक चल रहा होता है, बॉडी को पता होता है कि अब दिन है अब रात है। तो अगर हम इवन साइकिल चेंज कर दें कि दिन के वक्त सोना शुरू कर दें रात को जागना शुरू कर दें तो इसकी वजह से भी सारी बॉडी के ऊपर बहुत ही इसके मनफी असरात होते हैं,
बॉडी एडजस्ट फिर हो जाएगी उस क्लॉक के ऊपर। उसकी रीजन ये है कि बहुत से लोग हैं उनकी जॉब इस नोयत की होती है कि रात को वो जागते हैं और दिन के वक्त उनको रेस्ट लेना होता है, तो बॉडी क्लॉक तो एडजस्ट हो जाएगी उसकी।
जो दिन की नींद है इंसान की उसमें यूजली वो वेल रेस्टेड फील नहीं करता, इनके इसमें चिड़चिड़ापन आता है, वो सही तरह से अपने आप को वेल रहे,
यानी रात का वक्त बेहतरीन वक्त है सोने के लिए।
रात का वक्त नींद के लिए बनाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने ग्रोथ की भी बात की, ग्रोथ में जो है ना जो नींद में जब बच्चे जैसे मुमन होते हैं ज्यादा सोते हैं उसमें ये होता है कि नींद में ग्रोथ हार्मोन रात के वक्त सिक्रीट होना होता है, रात के मिड पहले और मिड वाले हिस्से में जाकर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना होता है। और हार्मोन है कोर्टिसोल, वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 से 8 बजे सिक्रीट होना होता है, तो ये दोनों नींद से बहुत ज्यादा लिंक है और ये दोनों हार्मोन ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम
अच्छा, यानी बच्चे की ग्रोथ में उसकी डेवलपमेंट में उसके बढ़ने में ये दोनों हार्मोन्स बॉडी के अंदर अहम है और इन दोनों का ताल्लुक स्लीप साइकिल से है। इसके साथ साथ मैं ये भी शेयर आपसे करता चलूं कि अगर एक तो हमने बात की कि 24 आवर्स वो स्लीप नहीं ले रहा, अगर वो मियार से कम यानी स्टैंडर्ड से कम भी नींद लेता है ये भी सही नहीं है। और हालात ये हैं कि डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के मुताबिक स्लीपलेसनेस नींद की कमी या नींद का ना आना ये एक मर्ज है और दुनिया में 20% अफराद 20% लोग वो नींद ना आने के मर्ज में मुब्तला हैं और सोने के लिए किसी दवा का यानी मेडिसिन का सहारा लेते हैं। जिस्मानी सेहत के लिए नींद बहुत जरूरी है। दिल और दीगर वेसल्स को ले जाने वाली जो नालियां हैं ब्लड वेसल्स, उनकी रिपेयर उनकी हीलिंग مرمت اور مندمل ہونے کا عمل یہ نیند کے دوران ہوتا ہے. اور بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ڈائریکٹ لنک وہ سلیپ لیسنس سے یعنی کم سونے سے ہے, یعنی کم سونا ان بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے. اس کے ساتھ یہ نیند جو ہے ایک قسم کی باڈی چارجنگ ہے. جیسے آپ کے موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے, ٹیبلٹ کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے, لیپ ٹاپ کی بیٹری کم ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں, وہ ریچارج ہوتا ہے. تو سونے کو بھی آپ یہ چارجنگ سمجھیں کہ انسان کے جسم کی بھی بیٹری جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے, یوں کہہ لیجئے. اور جب انسان سوتا ہے تو یہ ایک ریفریش بٹن ہے جو کہ آپ دباتے ہیں, پوری مشین ریفریش ہو جاتی ہے. اب اماؤنٹ آف سلیپ ریکوائرڈ, کہ کتنی نیند چاہیے ہوتی ہے ایک انسان کو, اس کے لیے جو ریسرچ ہوئی, اسکول جانے والے بچوں کے لیے 9 سے 11 گھنٹے, ٹین ایجرز یعنی 13 سال سے 19 سال کے لیے 8 سے 10 گھنٹے, اور 18 سال سے 25 سال کے لیے 7 سے 9 گھنٹے. یہاں پر میں ڈاکٹر صاحبان سرچ کروں گا کہ یہ جو پیمانہ, ایک یارڈ سٹک ہم نے سٹینڈرڈ پڑھی, ریسرچ کے ذریعے ملی ہمیں, یہ وہی ہے کہ اتنی نیند لینا ضروری ہے, اور اس نیند سے کم نیند لی جائے گی تو پھر باڈی فنکشن پراپرلی رسپونڈ نہیں کریں گے. اب یہاں پر چونکہ آپ دونوں کا تعلق ہے بھی بچوں کی فیلڈ سے, پیڈس کے آپ میڈیسن کے ڈاکٹرز ہیں, تو بچوں کو بڑوں کی نسبت زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے. اس بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے ڈاکٹر ثاقب, کہ بچوں کو بڑوں کی نسبت زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے.
اس میں یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ بڑوں میں جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے, اس کا جو سائیکل ہے, وہ جو دن اور رات کا سائیکل ہے, وہ میچور ہوتا جاتا ہے. جیسے میچور ہوتا جاتا ہے, نیند جو ہے اس کی ڈیوریشن کم ہوتی جاتی ہے. بچے ہیں ان میں یہ سائیکل صحیح طرح سے پوری طرح سے بنا نہیں ہوتا, اس لیے ان میں نیند جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ 2 سے 4 گھنٹے سوتے ہیں, پھر آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پھر وہ جاگتے ہیں, پھر 2 سے 4 گھنٹے سوتے ہیں. ان کو کہ ایک سائیکل نہیں ہوتا, وہ جب ان کا دل کرے وہ سو جاتے ہیں, جب دل کرے وہ جاگ جاتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی ان کا کوئی سائیکل نہیں ہوتا. تو سائیکل ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے, ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری یہ وجہ ہے کہ جیسے بچوں میں گروتھ ہونی ہوتی ہے, تو گروتھ کو مطلب کہ ہونے کے لیے ایک نیند کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے زیادہ جو ہے نیند بچوں میں, اس لیے کہ ان میں گروتھ کا پروسیس چلنا ہوتا ہے, یہ ہارمون سیکریٹ ہونے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے نیند ان میں تھوڑی زیادہ پڑی جاتی ہے.
دیکھا آپ نے میرے مدنی چینل کے ناظرین, جو خاص طور پر جو بچے سن رہے ہیں ان کو ایک آواز روزانہ آتی ہوگی, جس طرح ڈاکٹر ثاقب نے فرمایا کہ یہ بہت ضروری ہے نیند ہر طرح سے, اور یہ جو آواز جو ان کو روز آتی ہے, اس کو سن کر بچے کبھی کبھار چڑھ بھی جاتے ہیں کہ وہ کر رہے ہوں, کھیل رہے ہیں, کوئی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, اچانک آواز آتی ہے, ٹائم فار بیڈ, آ جاؤ سونے کا وقت ہو گیا ہے. والد صاحب, والدہ, دادی, نانی کی طرف سے آواز آتی ہے, آ جاؤ سونے کا وقت ہو گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سونے کی کال اسی وقت آتی ہے جب ابھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, اس وقت بچے کچھ ایکسٹرا ٹائم بھی مانگتے ہیں, بس میں آیا, ابھی آیا, ابھی آیا. بہرحال یہ حقیقت ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ بچوں کو بڑوں کی نسبت زیادہ سونے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور ہم بچوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ویسے تو سونا ایک بورنگ کام لگتا ہے, اس کے دوران کوئی کھیل وغیرہ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو تازہ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر اسامہ سے میں ایک بہت اہم سوال کروں گا. پہلی بات تو یہ بتائیے کہ بچوں کو سلانے کے لیے بڑوں کو, ماں باپ کو کیا ترکیب استعمال کرنی چاہیے, کیا چیز ہونی چاہیے اس کے لیے. اور دوسرا, عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں, ان کے کچھ نام بھی ہیں جو کہ ہم اوپن فورم پہ نہیں لیں گے, لیکن بہرحال سالٹ ان کے وہی ہوتے ہیں, نیند آور دوائیاں ہوتی ہیں, یہ اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیے گا.
جی بالکل, جیسے ڈاکٹر ثاقب نے بتایا کہ بچہ خاص طور پہ جو 1 سال چھوٹے بچے ہیں تو ان کا سائیکل نہیں بنا ہوتا, تو رات کے 2:30 بجے اٹھ جائے گا, ظاہر سی بات ہے ایک تو اس کی دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے, تو اس میں 2-2 گھنٹے بعد دودھ پینا ہوتا ہے, تو ماں باپ کے لیے وہ بہت جو ہے نا پریشانی کا باعث ہوتا ہے, اٹھ جائے گا پھر سوئے گا ہی نہیں. اب اس طرح کی کنڈیشن سے ماں باپ بعض دفعہ نیند آور دوائیاں, جس میں خاص طور پہ بعض کچھ کف سیرپ ہوتے ہیں, کھانسی کے سیرپ ہوتے ہیں, وہ ان کو دے دیتے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ, کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے بچوں کا سانس افیکٹ ہو سکتا ہے. بڑوں کے لیے یہ بنائے گئے ہیں, بچوں کے لیے بنائے نہیں گئے, تو بچوں کے اندر ان کے سائیڈ افیکٹس اس طرح سے آتے ہیں کہ سانس کی رفتار کم ہو جاتی ہے, سوتے سوتے بچے کا سانس بند ہو سکتا ہے, بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے, اس کو جھٹکے لگ سکتے ہیں. بعض دفعہ پھر ماں باپ اس طرح کی اگر ڈوز تھوڑی سی زیادہ دے دیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی بچہ ہوش نہیں کر رہا, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ اس طرح سے نیند کے لیے دوائی دی ہے. ہاں البتہ کچھ مطلب دوائیاں ایسی ہیں بھی جو کہ سیف ہیں اور بنائی ہی اسی پرپز کے لیے گئی ہیں کہ وہ بچوں کو سلانے کے لیے استعمال کی جائیں, مگر وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ان کو استعمال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر بچے کا آپ سلیپ سائیکل ایک تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ دن کے وقت اس کو کم سونے دیں, تو رات کے وقت اس کا ایک ٹائم فکس کر دیں کہ اس ٹائم پہ تم نے لیٹنا ہے, آنکھیں بند کرنی ہے, कंबल लेके लेटना ही लेटना है, तो फिर खुद ब खुद उसका स्लीप साइकिल बनना शुरू हो जाता है, फिर वो दिन के वक्त नहीं सोएगा, रात के वक्त सोएगा, और माँ बाप के लिए भी परेशानी का बाइस नहीं बनेगा।
डॉक्टर साहब ने बहुत ही जबरदस्त बात की तरफ तवज्जो दिलाई, और वो ये कि हर दवाई डॉक्टर की सुपरविजन में इस्तेमाल की जाए। बच्चे की उम्र छोटी है, दवाई का एक्शन और रिएक्शन उस पर ज्यादा हो सकता है, कोई भी दवा जो है वो डॉक्टर की सुपरविजन के बगैर इस्तेमाल ना की जाए। और दूसरी बात कि बच्चे को दिन को ना सोने दें ताकि वो रात की नेचुरल नींद ले और उसकी बॉडी जिस साइकिल के ऊपर एडजस्ट होना चाह रही है उस साइकिल की तरफ जल्दी एडजस्ट हो जाए। सो मेनी थिंग्स डिमांड और टाइम एंड अटेंशन। जिंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं जिनको हमें वक्त देना होता है, जिनको हमें तवज्जो देनी होती है, और किसी ना किसी तरह ये सारे काम हो जाते हैं। आमतौर पर जहां पर प्रॉब्लम आ रही होती है, जिस चीज की कुर्बानी दी जा रही होती है, वो नींद है। और ये नींद की कुर्बानी, इसको इसकी कॉस्ट के ऊपर हम बाकी सारे काम करते हैं। एंड इज देयर एनी टर्म लाइक टू मच स्लीप, यानी अब एक तो ये बात हो गई हमारे पास कि नींद की कुर्बानी दी जा रही है, और एक टर्म ये भी है कि देयर इज टू मच स्लीप, एक बंदा बहुत ज्यादा सोता है, वक्त से ज्यादा जो मियार बना है उससे ज्यादा सोता है, कैसा कुछ है? यस, देयर इज अ टर्म कॉल्ड हाइपरसोमनिया, यानी 9 घंटे से ज्यादा जो अफराद सोते हैं उसको हाइपरसोमनिया कहा जाता है। और अगर ये हालत बरकरार रहे, ज्यादा अरसे तक बरकरार रहे, एक बंदे की नींद 9 घंटे से ज्यादा रहे, तो उसको दिल की बीमारियां, डायबिटीज, शुगर, मोटापा और डिप्रेशन जैसी बीमारी का खतरा रहता है। और रिसर्च ये कहती है कि अगर ज्यादा सोने की आदत है और नहीं छूट रही तो इसके लिए डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। आइए डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं कि अगर ऐसा कोई मसला किसी को दरपेश हो तो इसमें क्या चीजें हम अख्तियार कर सकते हैं कि वो ज्यादा सो रहा है।
नींद के जो अमराज हैं उनमें एक तो नींद का कम आना, दूसरा नींद का ज्यादा आना भी है। हाइपरसोमनिया जैसे आपने बताया, इसी तरह नार्कोलेप्सी एक बीमारी होती है जिसमें इंसान मतलब वो एक हाइपरसोमनिया की एक इंटेंसिव कह लें क्या फॉर्म है कि उसमें बैठे बैठे ही इंसान सो जाता है और अचानक से वो जाग जाता है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसमें खासतौर पर बाज दफा इंसान किसी न किसी एनजाइटी या डिप्रेशन के अंदर मुबतला होता है। इसमें हमारे जो एक खास शोबा है साइकेट्रिस्ट जो हैं उनके उनसे जो है ना मशवरा करना इंतहाई मुफीद है। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को अब दिन के अंदर जो है ना वह आप सोने से बचाएं, अपनी उस रिदम को बनाने की कोशिश करें कि बाज दफा ये होता है कि रात को जब आप सोने के लिए लेते हैं तो नींद आ नहीं रही होती, फिर जब सोते हैं तो उसके बाद फिर जाग ही नहीं आती। तो इसके अपना जो साइकिल है उसको सेट करने की कोशिश करें।
पहली बात आपने ये फरमाई कि वो जो सो रहा है, ज्यादा सो रहा है, ये किसी बीमारी की वजह भी
डिप्रेशन या डिप्रेशन के अंदर बाज दफा ये भी होता है कि पेशेंट की नींद उड़ जाती है, बाज दफा बहुत ज्यादा आती है।
मेडिकल जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसमें जिसका टेस्ट करवाना चाहिए, अगर बंदे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है उसमें थायराइड का टेस्ट इसमें करवाना चाहिए, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन अगर वो हो जाए तो उसमें इंसान को नींद ज्यादा आती है अपने जो टाइम थायराइड कभी करवाना जरूरी है। दूसरा जो डॉक्टर साहब ने फरमाया डिप्रेशन एक बहुत मतलब बहुत ज्यादा एक कॉज है जिसमें बहुत ज्यादा नींद आती है इंसान को, तो इन चीजों के लिए फिर साइकेट्रिस्ट है और मेडिकली जो है ना ये
जिसको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो बच्चों में या बड़ों में, पहली तो बात इन्होंने बताई कि उसको डिप्रेशन एंग्जाइटी हो सकती है या कोई और वजह हो सकती है, उसके थायराइड ग्लैंड्स के अंदर डिस्टर्बेंस है, इसके ब्लड टेस्ट मौजूद है, लेकिन बेहतर यह है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाएं और सुस्ती ना करें। डज योर बॉडी शट डाउन फॉर स्लीप? क्या वाकई नींद के दौरान इंसान का जिस्म बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, जैसे कि बजाहिर लगता है कि वो साकित हुआ हुआ है? ह्यूमन बॉडी इज एन अमेजिंग मशीन, एक जबरदस्त मशीन है इंसानी जिस्म। और नींद की मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि जैसे कभी कभार हम वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं, और उस छुट्टियों के दौरान कोई और काम नहीं होता, और सोना भी यूं समझ लिए एक मिनी वेकेशन है कि इंसान सारे कामों को छोड़ के चलना, सोचना, पढ़ना, खाना, इन सब को छोड़ के वो अब सोने की तरफ चला जाता है। अब यहां पर हम सोने की स्टेजेस डिस्कस करेंगे। सोने की स्टेजेस से मुराद ये कि जब इंसान कोई लेट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे तरीके से सो गया, बल्कि उसकी बॉडी एक खास साइकिल कवर करती है। ये 5 स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस के ऊपर हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबान से रहनुमाई भी लेंगे। चीदा चीदा स्टेजेस में अर्ज करता चलूं। नंबर 1 पे डॉक्टर साहब मसल रिलैक्स होते हैं, जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दिल की धड़कन स्लो हो जाती है। नंबर 2 के ऊपर इंसान हल्की नींद में चला जाता है, हल्की नींद से मुराद कभी उसको उठाना आसान है। नंबर 3 के ऊपर वो गहरी नींद में चला जाता है, उसका ब्लड प्रेशर और गिर जाता है, जिसको स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। और चौथा मरहला डीप स्लीप का, यानी ज्यादा गहरी नींद का आ जाता है। और उसके बाद फाइनल स्टेज जो आप बता रहे थे रेम, रैपिड आई मूवमेंट, आंखों की हरकत के हवाले से, इस बारे में आप कुछ इरशाद फरमाएं।
जो फर्स्ट स्टेज है जिसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज कहते हैं, नॉन रेम, जिसमें यह है कि पहले इंसान लेटता है, आंखें बंद करता है, फिर हल्की नींद में जाता है स्टेज वन है, फिर उससे गहरी नींद स्टेज टू है, उससे गहरी नींद स्टेज थ्री है। ये सारी स्टेजेस हैं। इसमें जो है आपका जो इंसानी दिमाग जो है वो स्लीप में चला जाता है, बेसिकली वो अपनी रेस्टिंग फेज में चला जाता है, और बॉडी जो है वो उसमें अपनी मसल की टोन वगैरह सारा कुछ मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे बंदा ये स्टेजेस से गुजरते हुए रैम स्टेज में चला जाता है, जो कि जब ये होता है कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज बोलते हैं, जिसमें उसमें इंसानी दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, उसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसी के दौरान मेमोरी की प्रोसेसिंग हो रही होती है, सारी मेमोरी कंसोलिडेट हो रही होती है, उसमें दौरान दिमाग एक्टिवेट हो जाता है और अपनी जो सारे दिन के प्रोसेसेस हैं या दिन को उसने जो किया है वो सारे कंसोलिडेट हो रहा
है। बॉडी साकेत है, दिमाग एक्टिव है।
उस स्टेज में ये है कि दिमाग आपका एक्टिवेट है लेकिन बॉडी आपकी पैरालाइज हो गई है। उसमें एक हिकमत ये बताई गई कि जब रैम स्टेज में बंदा जाता है, दिमाग जब एक्टिवेट होता है उसमें प्रोसेसिंग करनी होती है, इसी दौरान ख्वाब आते हैं। तो अगर कोई ऐसी मतलब बंदे को ख्वाब आए कि जिसमें वो कुछ हरकत कर रहा है, तो ये ना हो कि वो जो दिमाग उसका परफॉर्म कर रहा है वही उसकी बॉडी परफॉर्म करना शुरू कर दे, उसमें बॉडी बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है, दिमाग आपके एक्टिवेट होता है। तो आपको अगर ख्वाब आया तो उसको एक्ट आउट नहीं कर सकते, नहीं कि आप किसी को मार रहे हैं तो उसको जो उसमें ये नहीं करेंगे कि आप वाकई ये करना शुरू हो जाए, तो आपको सिर्फ वो ख्वाब की फॉर्म में रहेगा, आप उसमें अपनी हरकत
यानी आपके दिमाग में जो पिक्चर पेंट हो रही है, जो सीन पेंट हो रहा है, वो आप फिजिकली हाथ से पांव से उसको नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये जो पांचों स्टेजेस हैं, रिसर्च कहती है कि सारी रात के दौरान एक इंसान इन पांचों स्टेजेस में शिफ्ट ओवर होता रहता है, यानी स्टेज फाइव से स्टेज फोर पे आ गया, फिर स्टेज थ्री पे आ गया, फिर स्टेज वन पे चला गया, सारी रात उसका एक साइकिल चलता रहता है जिसके अंदर वो अपनी रोटेशन जारी रखता है, और हर 90 मिनट के बाद पांचवे स्टेज में होता है यानी डीप स्लीप में। और अब आज हम एक इस सिलसिले में एक बात करते हैं जो कि बहुत नॉर्मल है हमारे माशरे में नींद के दौरान, अब इसको बीमारी समझा जाता है या नहीं समझा जाता, लेकिन ये कॉमन फिनोमेना है, और वो है सोमनैम्बुलेट, स्लीप वॉकिंग, नींद के दौरान चलना। अभी बात थोड़ी सी डरावनी भी लगती है कि मतलब कोई नींद के दौरान चल रहा है और उसको कोई देखे और हैरान हो जाता है कि नींद के दौरान चल रहा है, लेकिन साइंस के मुताबिक ये बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज। हो सकता है कि आंखें भी खुली हों लेकिन वो नींद के दौरान चलने वाला दुनिया को उस तरह नहीं देख रहा जिस तरह के एक जीता जागता इंसान देखता है, और सो जाने के चंद घंटों के बाद अब मुमकिन है कि वो नींद में चलना शुरू कर दे, चंद सेकंड से लेकर आधे घंटे तक वो ये कर सकता है। देखने वाले को ऐसा ही लगेगा कि वो जाग रहा है लेकिन दर हकीकत वो सो रहा होता है, और कुछ देर के बाद वो अपने बिस्तर पर वापस आ जाएगा। माहिरीन के तज्जिये के मुताबिक 15% बच्चे रेगुलर नींद में चलते हैं। इसकी वजह क्या है, माहिरीन इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मैं आपकी राय भी लूंगा, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कोई बुखार होता है, कोई क्रॉनिक कोई पुराना बुखार चल रहा होता है, या नींद की कमी के ऐसे मामला होते हैं कि जिसके अंदर ये वजह बनती है। वैसे इसमें आप क्या तज्जिया देते हैं, इसमें और क्या वजह बन सकती है नींद के दौरान चलना?
नींद के दौरान चलना, जैसे मैंने बताया कि रैम स्टेज में तो बिल्कुल बॉडी पैरालाइज है, वो नहीं कर सकता कुछ भी, ये बेसिकली नॉन रैम स्टेज में होता है, यानी कि जब डीप स्लीप में होता है तो उस दौरान नॉन रैम जो स्टेज है जिसमें आपका दिमाग सोया हुआ है लेकिन आपकी बॉडी हरकत कर सकती है, उसमें बेसिकली ये होता है। इसकी जो वजूहात हैं उसमें कोई एज सच कोई स्पेसिफिक वजह साइंस के सामने नहीं आई कि क्यों इसकी वजह क्या बनती है, उसमें बेसिकली कुछ थ्योरीज हैं कि कुछ जेनेटिकली या मुरूसी तौर पे या जिनसियाती तौर पे कुछ ऐसी जीन्स होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि खानदानी तौर पे भी होती हैं। दूसरा एक नींद का डिस्टर्ब होना, कोई मतलब अंडरलाइन कोई बीमारी है जिसकी, तो बहुत ज्यादा वजूहत बताई जाती है, कोई स्पेसिफिक वजह नहीं बताई जाती जिसकी क्या वजह है,
लेकिन इसको बीमारी आप नहीं कह सकते,
बीमारी नहीं है। 3 से 5 साल के दरमियान बच्चों में ज्यादा होता है, जैसे बच्चा 5 साल क्रॉस करेगा या थोड़ा बड़ा होगा तो ये खुद बहुत ही सेटल हो जाती है। तो
इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर तो नींद के दौरान चलने वाला अपने आप को जख्मी कर लेता है, यानी कोई ऐसी कंडीशन में आ जाता है, मैंने इस रिसर्च के दौरान 2-4 वाकयात ऐसे पढ़े हैं कि वो बंदा उठ के वो खिड़की की तरफ गया, 5वीं मंजिल पे था, खिड़की खोल के उससे छलांग लगाने की कोशिश की, और वो छलांग लगाते लगाते ही उसको पकड़ लिया गया और उसको बचा लिया गया, वरना ऐसे अगर हालात आ जाएं फिर मेरा ख्याल है मेडिकल साइंस की काउंसलिंग चाहिए हो सकती है।
यही है कि उसमें बेसिकली यही पेरेंट्स को समझाया जाता है कि जो डर अगर तो इस तरह का किसी बच्चे को या किसी को मसला है, उसमें घर की खिड़कियां और दरवाजे सबको लॉक लगा के रखा जाए, कोई खतरनाक चीजें किचन में पड़ी हुई हैं, जैसी जगह पड़ी हुई है, नींद के दौरान उठ के और उस सारी चीजें डालने, इन सारी चीजों को दूर रखा जाए, और इसको जस्ट एक स्टॉर्म की तरह इसको जस्ट पास होने दें, यानी आता है उसको गुजरने दें। लेकिन इसका अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर माहिर नफ्सियात के साथ
डॉक्टर यहाँ पर मैं ही डिस्कस करने लगा था कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या करें, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम देखें कि नींद में कुछ चल रहा है तो हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल किसी का बेटा है, किसी की जौजा है, कोई खुद है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नींद पे चलने वाले को जगाए नहीं, अगर आप जगाएंगे तो हो सकता है वो डर जाए या उसको कोई और नुकसान पहुंच जाए, एकदम से कोई साइकेट्रिक उसको शॉक हो या कुछ हो, ऐसे बंदे को आराम से पकड़ के बिस्तर के पास आके छोड़ दें ताकि वो आके अपनी उस स्टेटस को दोबारा मतलब कंटिन्यू कर सके। तो अब इसके अलावा जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो है एक और दिलचस्प रवैया। हम इस बात के ऊपर अपने सिलसिले का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले सिलसिले में मजीद नींद के बारे में बात करेंगे और खास तौर पर यह बात करेंगे कि नींद से पहले क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अगले सिलसिले में डिस्कस करेंगे। अभी इस सिलसिले को यूं क्लोज करते हैं और अगले सिलसिले में एक और बहुत अहम बात डिस्कस करेंगे, वह ड्रीमिंग, ख्वाब। ये बहुत अहम टॉपिक है हर तरह से। तो आखिरी बात जो आज के सिलसिले की, वह नींद के दौरान बोलना, सोमनीलॉक। इसके मुताबिक भी यही कहा जाता है कि ये कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं और इसमें 50% से ज्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब बच्चे रात को बोलते हैं और 10 साल की उम्र तक, लेकिन 10 साल की उम्र के बाद वो सिर्फ 10% बातें करते रह जाते हैं, जिस तरह अभी आपने उसके बारे में फरमाया। डॉक्टर साहब इस बारे में कुछ इशारा फरमाया कि ये नींद में जो बोलना है इसको भी बीमारी कंसिडर नहीं किया जाएगा।
नहीं, बेसिकली जैसे हमने अभी तक ये सारा कुछ डिस्कस किया है कि कुछ फेजेस नींद की ऐसी हैं कि जिसमें दिमाग अभी एक्टिव है और उसमें मुख्तलिफ किस्म की थॉट्स आपके सारे दिन में जो आप करते रहे हैं वो कंसोलिडेट हो रही हैं, तो उस दौरान समटाइम्स ये चीजें इंसान अपने मुंह से भी बोल रहा होता है। तो बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं है, हम इसको बीमारी नहीं कह सकते कि ऐसे शख्स से कोई इलाज करवाया जाए या कुछ इस तरह से। ये जस्ट मतलब अगर किसी को ये है तो इट कैन रिकवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, अदरवाइज अगर ये परसिस्ट भी करता है तो फिर इसमें स्पेसिफिकली ये जरूर कहा जाएगा कि अगर जो उसके घर वाले हैं वो खास तौर पे इस चीज पे उसको जना वो तंज ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं ताकि वो इसकी वजह से कहीं कोई साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में ना चला जाए। क्योंकि बाद दफा ये होता है कि आप किसी फंक्शन पर जाते हैं, किसी घर जाते हैं, तो वहां पर जाकर अब एक शख्स को पता है कि मैं नींद में बोलता हूँ तो फिर वो या तो सोएगा नहीं या वो इस हवाले से वो परेशान होगा, जिसकी वजह से हो सकता है वो और ज्यादा उसका ये मसला बढ़ जाए। तो इसमें यह कि आप उसको इस चीज का नोटिफाई ना करें, उस चीज का एहसास ना दिलाएं, बस इसको जनरल इग्नोर करें। तो बस के साथ साथ
सर इसके अंदर ऐसा ही है कि डीप स्लीप में जाके वो बोलता है या फिर नॉन डीप स्लीप के अंदर बोलता है?
ये बेसिकली ये जो सारी है, नींद में चलना, नींद में बातें करना, नींद में जो टांगे मारना, हरकत करना, ये सारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि जब आपका दिमाग सोया हुआ है और आपकी बॉडी हरकत कर सकती है, उसमें होता है डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप के अंदर। रैम स्टेज के अंदर ये सारी चीजें नहीं पाई जाती, रैम स्टेज के अंदर जो ड्रीमिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें जब तक नींद के अंदर कोई बहुत बड़ा इंटरप्शन पैदा ना करे हमें मेडिकल काउंसिलिंग की जरूरत नहीं है। जैसा रिसर्च ये कह रही है कि अगर सोने के दौरान बोलने वाले इतना बोल रहे हैं कि उनकी अपनी नींद मुतासर हो रही है, उसे बार बार उठ जाते हैं, तब तक इसकी मेडिकल काउंसिलिंग ना की जाए। तो मदनी चैनल के नाजरीन, ये बात हमने आज सीखी समझी कि नींद के दौरान इंसानी रवैये जो आ रहे हैं हमारे सामने, नींद के दौरान बोलना चलना, ये हो सकता है दिन के वक्त जितनी उसकी बात हो, मिसाल के तौर पे कारोबारी आदमी है, वो लेन देन कर रहा है, एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाला अपने हिसाब से काम कर रहा है, एक डॉक्टर है उसकी मेडिकल काउंसलिंग है, एक इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट से काम कर रहा है, यही चीजें उसके दिमाग में कंसोलिडेट होती हो और वही चीज उसकी जबान पर आ जाए, ताहते कि ये बात उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं कर रही, जो नॉर्मल पैटर्न और टाइम स्पैन नींद का होना चाहिए वो पूरी तरह वो अटेन कर रहा है और इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, तो इसको मेडिकल चीज समझना नहीं चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर सामा ने कहा कि अगर इसका उसको एहसास दिलाएंगे, हो सकता है ये एहसास उसको सोने ना दे और ये एहसास उसकी नींद के अंदर ज्यादा मसला क्रिएट करे और वो किसी और साइकेट्रिक इशू का शिकार हो जाए। आज के दिन अपनी इस गुफ्तगू को खत्म करते हुए हम अमीर अहले सुन्नत की जात से मजीद एक बरकत हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारी ख्वाहिश यही होती है और कोशिश यही होती है हमारी कि हर सिलसिले में कुछ ना कुछ अमीर अहले सुन्नत की जात के हवाले से हम बात करें। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, नींद के हवाले से अगर बात की जाए, फजर की नमाज में उठना ये एक बहुत बड़ा इशू लगता है और बहुत से अफराद इसकी बात करते हुए नजर आते हैं कि फजर के लिए उठने का बड़ा दिल करता है लेकिन नींद नहीं खुलती। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं 3 अलार्म क्लॉक्स लगाकर सोता हूँ, 3 अलार्म क्लॉक्स, यानी इसकी वजह हमारे लिए तरगीब हो सकती है, वरना एक हस्ती जो सारी जिंदगी अपनी जिनकी वालदा ने उनकी ऐसी तरबियत की हो, जिनको घर से ऐसी तरबियत मिली हो कि उन्होंने फजर के लिए उठना है, ना सिर्फ उठना बल्कि दूसरों को उठाना है, और अमीर अहले सुन्नत ने जो ये तरीका हमें सिखाया सदाए मदीना का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तो ये हस्ती है कि उनके सदके आज दुनिया में कितने लाखों करोड़ों अफराद की फजर की नमाज अदा होती होगी। किसी ने किसी से पूछा कि आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं, उन्होंने कहा मैं 10 नमाजें पढ़ता हूँ। कहते नमाजें तो 5 होती हैं, वो कहते मैंने दरहकीकत 10 लोगों को नमाजी बनाया है, तो उनकी नमाजों का सवाब भी मुझे क्रेडिट होता है। तो अमीर अहले सुन्नत को कितनी नमाजों का सवाब मिलता होगा, आपकी जात से जो वाबस्ता हुआ, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आया, वो नमाजी बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी ये मस्जिद भरो तहरीक है, दावत इस्लामी में जो आता है उसको फराइज पर अमल करने की तरगीब मिलती है, उठकर अल्लाह ताला की इबादत करना, ये तो अल्लाह ताला के नेक बंदों की निशानियों में आया है। उठ के तहज्जुद की नमाज अदा फरमाएं, फजर के लिए जरूर बिल जरूर उठें, ये एक फर्ज है। अगर कोई स्टूडेंट है वो अपना टाइम टेबल ऐसा बना ले, यानी उसने इस नमाज तक पढ़ना है, इस नमाज से इस नमाज तक पढ़ना है, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर चल रहे होते हैं कि इतने चैप्टर में इतनी देर तक खत्म करूंगा, इतने चैप्टर में इतनी देर तक खत्म करूंगा। तो आप अपने ये शॉर्ट टर्म गोल्स नमाजों को बना लें कि फजर के वक्त सबसे जबरदस्त मेमोरी एक्टिव होती है। याद रखिए ये एक रिसर्च है कि जब इंसान सोकर उठता है उस वक्त वो काम उसके लिए सबसे आसान होते हैं और वो काम सबसे ज्यादा रिजल्ट वाले होते हैं जो काम नई चीज याद करने वाले होते हैं। तो ये तो बड़ा जबरदस्त टाइम है, नमाज फजर की अदायगी हो, सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, थोड़ा सा बंदा वॉक कर ले, वॉक करने के बाद बैठे, किताब खोले, जो सबक है उस सबक को पढ़े, उसको कंसोलिडेट करे, उसको याद करे, इसका उसको बहुत फायदा होगा। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सदाए मदीना, सदाए मदीना से मुराद ये है कि जब आप उठे, आप अपने मोहल्ले में हैं, आपको कुछ खास वर्ड्स दिए जाएंगे, उन वर्ड्स को आप दोहराते जाएंगे, अपने घरों में मौजूद अफराद उसको सुनेंगे और सुनकर आपकी तरगीब पे हो सकता है वो भी उठ जाएं, बिस्तर को छोड़ दें और नमाज फजर की तरफ आ जाएं। अगर आप हॉस्टल्स में हैं, अगर आप हॉस्टल्स में हैं वहां पर आप एक तरीका कर सकते हैं। हॉस्टल में हम तरीका करते हैं शोबा तालीम के अंदर कि हम एक पेपर जो है वो नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं कि भाई जिस कमरे वाले ने फजर के लिए उठना है अपने कमरे के आगे, तो उस पेपर के ऊपर कमरों के नंबर लिखे होते हैं, अपने कमरे नंबर के आगे निशान लगा दे और सुबह जाकर उसको नॉक करके उठा देते हैं। ये जो सदाए मदीना है ये तो मैसेज के जरिए भी लगाई जा सकती है, ये जो सदाए मदीना ये कॉल करके भी लगाई जा सकती है। मैं जाती तौर पर ऐसे साईं भाई को जानता हूं जो एक अरसे से तहज्जुद की नमाज के लिए सैकड़ों कॉल्स करते हैं रोजाना, ये उनका जज्बा है कि हम तहज्जुद के लिए किसी को उठा रहे हैं। तो आइए दावत इस्लामी का मुश्कबार मदनी माहौल ये हमें नमाजी बनाता है और इस्लामी फराइज की तरफ हमें ले जाता है, उनको सीखने की तरगीब हमें मिलती है। आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वस्ता हो जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले सिलसिले में हम इसी नीयत के टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।